ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है। दूरसंचार संघ के इतिहास में यह पहली बार है जब यह कार्यक्रम भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। इस कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है जिसमें 120 देशों की भागीदारी हो रही है। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग आज दोपहर बाद 3:30 बजे नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को सौंपे एक पत्र में कहा कि श्री अब्दुल्ला को विधानमंडल पार्टी का नेता चुना गया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल श्रीनगर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच गहरे आर्थिक सहयोग का आह्वान किया है। अल्जीयर्स में अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के एक नए युग की दिशा में नई गति प्रदान करने पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावा की यात्रा के अंतर्गत अल्जीयर्स में है। वे कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगे। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुलाया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया था। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 9 देश शामिल हैं। भारत और कोलंबिया के बीच दृश्य श्रव्य सह निर्माण समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन भारत के प्रतिनिधि होंगे। इस समझौते से दोनों देशों के निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने अपने 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन मिशन की घोषणा की है। प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान देश की परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने और भारत की वैज्ञानिक नवाचार उन्नति में योगदान देने के लिए शोधकर्ताओं को आमंत्रित करता है, जबकि मिशन इलेक्ट्रिक वाहन मिशन को बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुसंधान तथा विकास तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित बहराइच में वरिष्ठ अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजने और वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश दिए। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण को लागू किया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 1 जनवरी तक लागू रहेंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर मानसून के आगमन के साथ ही तमिलनाडु में इस मौसम की पहली बारिश हो रही है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने कल रात दुबई में पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इसके साथ ही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। भारत 4 अंक प्राप्त करके ग्रुप एक में 3रे स्थान पर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।